प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 667। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्तारं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, सुरासुरनरपतिवन्दने प्रविनाष्टगापि कर्मणे प्रणमण करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वरिशेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दुर्ग चारित्र तपवीर्य ते सर्वने साते तथा प्रत्येकने वंदुवाणे हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरिहंतने अरिहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिए गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो साम्यने जे नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुंकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं और उसमें से अभी हम आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 77 पर आ गए, 77। नीचे का पैराग्राफ वहां से हम पढ़ेंगे। यहाँ बात क्या हो रही थी याद है? आत्मा ही बंद है, क्योंकि जो राग द्वेष रूप से परिणत आत्मा स्वयं बंद है, ये बात हो रही थी, क्योंकि वो उसके अपने स्वचतुष्टय में है। कर्म वाला जो बंद है तो कहने के लिए है, वो तो परद्रव्य है, वो परम है, वो आत्मा में घुस नहीं गया है, ये कह रहे थे। देखो नीचे गुरुदेव श्री कहते हैं, एक लो निश्चय बंध छे, व्यवहारे बीजी चीज छे, ये जानवा माटेनी वस्तु नथी, जानवा माटे चीज छे, पण पोताना अस्थि आत्मानी हयातिमा, हयातिमा एने उसके अस्थि में, उसकी सत्ता में ए द्रव्य बंधन नथी। ये हम हयाति किसको कहेंगे? जिंदगी भर ऐसा नहीं है। आत्मा की तो हयाति कायम है, अनादि अनंत, परंतु उसका अस्तित्व जो है, उसके अस्तित्व में, उसकी सत्ता में द्रव्य बंधन नथी। અને હયાતિમાં બંધ હોય એને જ બંધ કહેવામાં આવે છે। તો આત્મા કે અસ્તિત્વ મેં કોણ સા બંધ હૈ તો એ મોહ રાગ દ્વેષ વાળા ભાવ બંધ જિસકો કહેંગે, એની હયાતિમાં તો પર્યાયમાં વિકાર છે તે જ એને ખરેખર બંધન છે। ઓર વો કૈસા બંધન તો કે તે દુઃખદાયક છે અને ચાર ગતિમાં રખડવાનું એ જ કારણ છે। તો કિસને બાંધા ઉસકો? स्वयं उस रूप परिणति हुआ है, उसी का अपना अपराध है। अगर पराधीन होता तो पर अगर छोड़ता तो वो छूटता, स्वयं ने किया है तो स्वयं भी उसमें से छूट सकता है, ये कहना चाहते हैं। एकेन्द्रिय थी मांडी ने, यानी एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय आदि जीवो पोताना भाव बंधोथी ज परिभ्रमण करी रहा छे। हमें दुख लगता है, अरे अरे बेचारा ऐसी परिस्थिति में है, वो एकेन्द्रिय क्या करते होंगे, अरे परंतु ये स्वयं उन्हीं के ये जो मोह राग द्वेष का परिणाम है, ये अपने भाव बंध से ही परिभ्रमण कर रहे हैं। जड़ बंध थी नथी कर्या, वांदा उठे छे ने मोटा, आठ कर्म थी जीव रखड़े छे, नहीं मैंने अपने भाव बंध से वो रखड़ता है, वो कर्म तो पर चीज है। जयपुर में पहलो प्रश्न ही थयो, द्रव्य कर्म ने लईने विकार अने गति थाय के नहीं, पंडितों नी वच्चे पहलो प्रश्न समझाणो। सत्तर में पहलो प्रश्न ही हतो, शरीर नी क्रिया थी धर्म थाय के नहीं, अरे अरे आ प्रश्न, ए देवानु प्रिया आ जुवानी आ तो शर्मावी दे छे, आवो प्रश्न। ये देवानु प्रिया के लिए शोभा ने कुछ लिखा था व्हाट्सएप में, मैसेज आया था उसका, किसी इन जनरल बोलते हैं, हाँ ऐसा उन्होंने लिखा है। हाँ क्योंकि उन्होंने देवानुप्रिय ने देव में जाना चाहते हो तो ऐसे ऐसे मनुष्य के लिए है, मनुष्य के बदले देवानुप्रिय, हाँ संबोधन जैसे किया है, यानी किसी का नाम लेकर नहीं बोला है वो, आप पूछ लेना और किसी से।
हेमंत भाई को पूछ लो, क्यों वो तो गुरुजी का राइट हैंड है।
नहीं पर यहाँ नहीं होगी, अभी
आएंगे जब पूछना।
देखो सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ, आ हा हा, अरे वितराग प्रभु सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ देवादिदेव वितराग।
एक मिनट यहाँ लिखा है ना, ए देवानु प्रिया आ जुवानी ने तो शर्मा भी दे छे, यानी उस जवान लड़के ने पूछा होगा, उसका नाम देवानु प्रिया होगा। हम मायामी में गए थे, वहां पर भी एक देवानु प्रिय था, हीरे का व्यापारी, दो भाई थे ना।
हाँ अभी आगे पढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे वितराग प्रभु सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ देवादिदेव वितराग, जिनको तीन काल तीन लोक का ज्ञान हुआ, वे भगवान फरमाते हैं भाई, ये जो सर्वज्ञ भगवान है जिन्होंने सब कुछ जान लिया है, स्वपर को पूरे विश्व को जान लिया है, वो क्या कह रहे, आ प्रवचनसार छे भगवान ने वाणी, प्रवचन, प्र एटले उत्कृष्ट, वचन कहो के दिव्य ध्वनि कहो, ए वाणी में आवेलो सार भगवान कुंदकुंदाचार्य देव कहे छे भाई। ओहो हो, अबंध स्वरूपी भगवान अनादि द्रव्य स्वभाव शुद्ध चिदानंद अबंध छे, ये द्रव्य स्वभाव की बात है, और बंध कहाँ है, पर्याय में। एने आ विकार नी एकता बुद्धि थी निश्चय थी खरो बंध ए छे, विकार से भी विकार की एकता बुद्धि जास्त डेंजरस है। ये खरोखर बंध है, संसार छे दुख छे ए बंध छे, एज विकार छे अने सर्व संसार नी खान छे, समझाय छे काई, एम नक्की कर्या विना, पहले में पहले ये नक्की करना पड़ेगा, मुझे तो कोई पर का बंध तो है ही नहीं है, अपने जो विकार है वही बंध है, और उसी के कारण जीव रख रहा है, और उस विकार की रुचि पूर्वक कर रहा है, वो बात आई ना, मिथ्या तो क्या है, वो शुभाशुभ की रुचि पड़ी अंदर, राग की रुचि है, राग का राग है अंदर, वो मैं कर सकता हूँ, वो मेरा है और उससे कल्याण होगा, ये भावना है उसकी, ऐसा ही उसका मान्यता है उसके, ऐसी एम नक्की कर्या विना इन्हें भाव बंध निश्चय थी मारो माराती छे, एम नक्की कर्या विना, क्या कहते हैं, पहले पहले क्या नक्की करना है, ભાવબંધ જો હે વો નિશ્ચયથી મારો મારાથી છે, અને જો મારા હૈ વો મેરા હૈ મેરે સે હૈ, હા એસે નક્કી કિયે બિના એ બંધને ટાળવાની વસ્તુ, એ બંધ કો ટાળના વસ્તુના સ્વભાવની આશ્રય દૃષ્ટિ કર્યા વિના એ બંધ ટળતો નથી. વસ્તુ સ્વભાવ કી દૃષ્ટિ કરના ઉસકા આશ્રય કરના હૈ, ઉસકે બિના બંધ નહીં ટલેગા. હજી વસ્તુની સ્વતંત્રતા બંધની ખબર નથી, એને વો બંધ મેં ભી વો સ્વતંત્ર હૈ. એને ચિદાનંદ ભગવાન જ્ઞાન મૂર્તિ આત્મા છે, એનો આશ્રય લઉં તો આ બંધ ટળે એ દૃષ્ટિ થઈ શકે નહીં. પહેલે પહેલે બંધ હૈ વો મેરા મેરે મેં હી હૈ, પરસે નહીં હૈ પર કા બંધ નહીં હૈ એ નક્કી કરેંગે. ફિર ઉસકે ટાલને કા ઉપાય ભી અપને મેં હી હૈ, ક્યા હૈ વો સ્વભાવ કી દૃષ્ટિ કર રહી ઉસમેં સ્થિર હોના હૈ. યે 188 ગાથા પૂરી થઈ. અબ 189 કો હમ પઢેંગે, પેજ નંબર 79. અથ નિશ્ચય વ્યવહાર અવિરોધમ દર્શયતે, એટલે નિશ્ચય વ્યવહાર મેં અવિરોધ હૈ એ વાત બતા રહે. મેં મૂળ પુસ્તક મેં સે પઢતી હું, એટલે નિશ્ચય વ્યવહાર કા અવિરોધ બતલાતે હૈ. ગાથા એસો બંધ સમાસો જીવાણમ નિશ્ચયેણ નિદ્દિષ્ટો અરહંતે જદિનમ વ્યવહારો અન્નહ ભવિતો. આ જીવ કેરા બંધનો સંક્ષેપ નિશ્ચય ભાખિયો અરહંત દેવે યોગિને વ્યવહાર અન્ય રીતે કયો. બરાબર હે ને? અન્વયાર્થ પડતે હૈ. યહ એને પૂર્વોક્ત પ્રકાર સે જીવો કે બંધ કા સંક્ષેપ. જીવો કે બંધ કોણ સા બતાયા? વો જો ભાવ બંધ હૈ, મોહ રાગ દ્વેષ કો હી બંધ હૈ. ઉસ બંધ કા સંક્ષેપ નિશ્ચય સે અરહંત ભગવાન ને યતિયોં સે કહા હૈ, એને વો સમોસરણ મેં બતાયા ઉન્હોને. વ્યવહાર અન્ય પ્રકાર સે કહા હૈ, યે ક્યા બતાયા ઉન્હોને? નિશ્ચય બતાયા ઓર વ્યવહાર અન્ય પ્રકાર સે બતાયા. અબ ઇસી કી ટીકા પઢતે અભી હમ, અમૃતચંદ્રાચાર્ય કે પહેલે પઢ લેતે. મેં હિન્દી મેં સે પઢુંગી. રાગ પરિણામ હી આત્મા કા કર્મ હૈ, વહી પુણ્ય પાપ રૂપ દ્વૈત હૈ. એ દ્વૈત ક્યા હોતા હૈ તારાબેન? હા, દ્વૈત દ્વૈત કિસકો કહેંગે? દોપના. યહાં ક્યા કહેતે? રાગ હૈ વો આત્મા કા કર્મ હૈ, કર્મ એને કાર્ય હૈ, વહી વહી અને વો રાગ પુણ્ય પાપ રૂપ દ્વૈત હૈ. પુણ્ય રાગ ઓર પાપ રાગ એસે દો પ્રકાર ઉસમે હૈ. આત્મા રાગ પરિણામ કા હી કરતા હૈ, ઉસી કા ગ્રહણ કરને વાલા હૈ, ઉસી કા ત્યાગ કરને વાલા હૈ. એ ગ્રહણ ઓર ત્યાગ કિસકો કહા થા પહેલે યાદ હૈ આપકો? લક્ષ્મી યાદ હૈ? ગ્રહણ કરતા હૈ ત્યાગ કરતા હૈ, ઉત્પાદ ઓર વ્યય કરતા હૈ, ઉસકો ઉસકો ગ્રહણ ઓર ત્યાગ કહા થા પહેલે. આપકો યાદ હૈ ને? પહેલે દો ચાર કહા થા પહેલે એ વિષય આયા થા. હા દેખો ક્યા કહેતે હૈ, એને વો પર કો ગ્રહણ ત્યાગ ઉસકા નહીં કરતા હૈ, અપને પર્યાય કા હી ગ્રહણ ત્યાગ હોતા હૈ ને. નહીં ઉત્પન્ન હોતી હૈ, પુરાની વ્યય હોતી હૈ. દેખો ફિર સે પઢતી હું કે આત્મા રાગ પરિણામ કા હી કરતા હૈ, ઉસી કા ગ્રહણ કરને વાલા હૈ ઓર ઉસી કા ત્યાગ કરને વાલા હૈ. એક કઈ ગ્રહણ ઓર ત્યાગ કૈસે હોગા? પૂર્વ જો પર્યાય વાલા રાગ હૈ ઉસકા ત્યાગ હોગા, ઓર વો ભી એક સમય કે બાદ ઉસકા ભી ત્યાગ હોગા. યે કહે યહ શુદ્ધ દ્રવ્ય કા નિરૂપણ સ્વરૂપ નિશ્ચય નય હૈ. નિશ્ચય નય ક્યા હૈ? નિરૂપણ કરને વાલા હૈ, નિરૂપણ એને બતાને વાલા હૈ. કૈસા બતાતા હૈ? शुद्ध द्रव्य को बताने वाला है। नीचे फुटनोट लिखी है यहाँ पर, उसको मैं पढ़ रही हूँ, आपके उसमें है कुछ लिखा है? हाँ देखो, निश्चय नए मात्र स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है। अभी ये राग द्वेष मोह ये भी स्वद्रव्य का ही परिणाम है, वो कुछ कर्म का परिणाम नहीं है, पर का परिणाम नहीं है, इसलिए उसको निश्चय कहेंगे। देखो क्या कहते हैं, निश्चय नए मात्र यानी केवल ओनली स्वद्रव्य के परिणाम को बतलाता है, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। द्रव्य गुण पर्याय मिलकर वो जीव का है, जो कोई पुद्गल रूप कभी नहीं हुआ, अन्य जीव रूप नहीं हुआ, वही उसकी शुद्धता है, उसी को शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला बताया। और व्यवहार ने परद्रव्य के परिणाम को आत्म परिणाम बतलाता है। आत्मा ने कर्म को बांधा, वो अपना परिणाम बताए, है तो परद्रव्य का, मतलब आत्मा ने किया तो आत्मा का कार्य बता रहे उसको, इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला कहा है। यही अशुद्धता है उसकी, वो कथन में आया है। द्रव्य में ऐसी अशुद्धता नहीं होती, द्रव्य तो कभी पररूप होता ही नहीं है, दो द्रव्य हमेशा ही भिन्न है, उसके स्वचतुष्टय भिन्न है, उनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी एंटर नहीं होता है, घुसता नहीं है, तो कहते वो अशुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला उसको कहेंगे व्यवहार नय। जो व्यवहार नय बताता है, ऐसा तो वस्तुस्थिति नहीं है, वस्तुस्थिति को बताने वाला निश्चय नय है, व्यवहार नय के आरोपित कथन होता है। एक ने दूसरे द्रव्य को किया, कर्म ने जीव को फल दिया, जीव ने कर्म को बांधा, उसको उपशमाया, उसका क्षय किया, ये क्या है? व्यवहार नय है, उपचार कथन। देखो फिर ऊपर पढ़ते हम, यह शुद्ध द्रव्य का निरूपण स्वरूप निश्चय नय है, और जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है वही पुण्य पाप रूप द्वैत है। आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, उसका ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला है, ऐसा जो नय वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप व्यवहार नय है। फिर से ही पूरा बड़ा वाक्य है, आशा बहन को नहीं समझा क्योंकि वो तो ऐसा कर रहे हैं, सुनना बराबर बराबर सुनना। देखो पहले निश्चय ने किसको कहा? शुद्ध द्रव्य का निरूपण करने वाला। शुद्ध किसको कहा? आत्मा की पर्याय को आत्मा की कहना, उसका द्रव्य गुण और पर्याय आत्मा का ही है, उसको कहना वो है शुद्ध, शुद्ध द्रव्य है और उसी का निरूपण करता है वो निश्चय ने है। अब व्यवहार ने किसका कही? अशुद्ध द्रव्य का निरूपण करेगा। अशुद्ध किसको कहा? देखो फिर से, जो पुद्गल परिणाम आत्मा का कर्म है, आत्मा का कर्म है अभी, यानी जो जड़ कर्म जो है, पुद्गल परिणाम जो आत्मा का द्रव्य कर्म जो है, वही पुण्य पाप रूप द्वैत है, यानी जो आत्मा ने कर्म बांधे वो पुण्य रूप और पाप रूप दो प्रकार हो गए उसके अंदर। और आत्मा पुद्गल परिणाम का करता है, यानी वो जड़ द्रव्य है, द्रव्य बंध है, उसका आत्मा करता है, उसका ग्रहण करने वाला और छोड़ने वाला है कौन? आत्मा। यानी आत्मा कर्म को ग्रहण करता है, छोड़ता है, ऐसा जो नय, ऐसा जो कथन करेगा वह अशुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप, यानी वो अशुद्ध द्रव्य का कथन करे। अशुद्धता क्या है? एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का कुछ किया ऐसा कहने वाला है, वो अशुद्ध हो गया, तो ऐसा व्यवहार नय है। समझ में आई बात? 367 पर हम आ गए अभी, अभी तक मैं 366 पर पढ़ रही थी, हिंदी ओरिजिनल प्रवचन सर, अभी गुजराती में है ना, ऐसा ही हाँ। ये दोनों नए हैं, तो नए जो होते हैं ना, ज्ञान स्वरूप होते हैं और कथन स्वरूप, कथन में भी होते हैं, वाणी में भी होते हैं, क्योंकि शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप दोनों प्रकार से द्रव्य की प्रतीति की जाती है, यानी हम उसको देख सकते इस तरह से, द्रव्य को शुद्ध रूप से देख सकते हैं, अशुद्ध रूप से देखते, यानी पर द्रव्य को बांधने वाला करने वाला ऐसा देख सकते हम, तो उसको क्या कहने? व्यवहार नय से ऐसा कहें। किंतु यहाँ निश्चय नय साधकतम होने से, साधकतम यानी उत्कृष्ट साधक, ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है ने क्या, वो उपादेय निश्चय ने उपादेय है, व्यवहार ने हेय है, हेय यानी छोड़ने लायक है, आदरने लायक नहीं है, बस जानना बस इतना है। क्या कहते हैं, निश्चय ने साधकतम होने से ग्रहण किया जाता है यानी उसको उपादेय बना जाता है, क्योंकि साध्य के शुद्ध होने से, द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से, साध्य क्या है, अपना ही द्रव्य है ना, तो शुद्ध है वो, परद्रव्य रूप कभी हुआ नहीं है। द्रव्य के शुद्धत्व का द्योतक होने से, कौन निश्चय न है वो द्रव्य के शुद्धत्व को बताने वाला है, द्योतक है ना, क्या बताने वाला है, प्रकाशक है। निश्चय न ही साधकतम है, किंतु अशुद्धत्व का द्योतक यानी अशुद्धत्व को बताने वाले, क्या अशुद्धत्व बताया, परद्रव्य का कुछ किया नहीं, कर्म जड़ कर्म बांधा, ये अशुद्धत्व हुआ। मोह राग द्वेष विकार वो आत्मा का आत्मा कहना वो तो शुद्धता हुई, यही बात हो रही है यहाँ पर। हमें क्या लगता है, अरे विकार है शुद्ध कैसे कह रहे, नहीं वो आत्मा का है ना, तो आत्मा का, तो आत्मा का है तो आत्मा का कहना वो शुद्धता, और कर्म पुद्गल का है उसको आत्मा का कहना ये अशुद्धता। यहाँ क्या विषय चल रहा है बराबर समझना, ये व्यवहार नहीं क्या है, अशुद्धत्व का द्योतक है, यानी परचीज जो है पुद्गल की जो है वो आत्मा की कहना, आत्मा उसका ग्रहण करता है त्याग करता है ऐसा कहना, ये अशुद्ध, ये अशुद्धता है, और ये व्यवहार नहीं उसको बताता है। वो साधकतम नहीं है यानी उससे तो हमें कुछ साध्य नहीं होने वाला है, कथन आता है शास्त्र में परंतु वो तो समझ कर बस, कैसे समझना कि वो निमित्त का कथन है, संयोग से ऐसी बातें बताई जाती है। अब हम जयसेनाचार्य की टीका पढ़ेंगे, फुटनोट, हाँ बड़ी है फुटनोट, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, देखो क्या कहते, आपके उसमें नहीं है, यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए, एक द्रव्याश्रित उसकी जो पर्याय है वो उसी की कहना वो है शुद्ध ने, शुद्ध द्रव्य कहेंगे उसको हम, और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से जानना चाहिए। यही बात अभी अपनी हो रही थी ना, यानी शुद्ध द्रव्य ने शुद्ध पर्याय ऐसा नहीं अर्थ है यहाँ पर, अपनी पर्याय अपनी कहना यह शुद्ध द्रव्य का कथन, और परद्रव्य की पर्याय आत्मा की कहना यह अशुद्ध द्रव्य का कथन। अब आगे कहते हैं, निश्चय न उपादेय है और व्यवहार न हेय है, हेय यानी क्या, छोड़ने लायक है। प्रश्न पूछते उसी के ने, इसी को समझाने वाला जो प्रश्न उत्तर है, द्रव्य सामान्य का आलंबन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणाम की ग्रहण त्याग रूप पर्यायों को स्वीकार करने वाले निश्चय ने को उपादेय क्यों कहा है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, समझ में आया। हम हमेशा उपादेय किसको कहेंगे, हम कहेंगे जीव तत्व उपादेय है और वो आश्रय तत्व है, ऐसा कहेंगे हम, और हमने ऐसा सुना भी है, और यहाँ आश्रय सहित वाला जीव लिया है उसको शुद्ध कहा है, राग पर्याय जीव की है तो उसको शुद्ध कह रहे हैं, तो ऐसा क्यों, ये प्रश्न है। देखो फिर से प्रश्न मैं फिर दोबारा पढ़ती हूँ, आपके उसमें नहीं है, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ हिंदी ओरिजिनल में से, नहीं मत ढूंढो सुनो, हाँ देखो, द्रव्य सामान्य का आलंबन ही उपादेय है, द्रव्य सामान्य जो है तो उसी को शुद्धने का विषय कहते, भेद बिना वाला वो उसको शुद्ध कहा, कहीं किस अपेक्षा से कहा, किसको कहते हैं, हाँ शुद्धता, तो द्रव्य सामान्य का आलंबन यानी उसी का आश्रय लेना उसको वही उपादेय है, फिर भी यहाँ यहाँ इस गाथा में इधर प्रवचन सार में राग परिणाम की ग्रहण त्याग रूप पर्यायों को, ग्रहण त्याग रूप पर्याय उत्पाद व्यय रूप पर्यायों को स्वीकार करने वाले निश्चय ने को उपादेय क्यों कहा, यहाँ का निश्चय ने किसको स्वीकार कर रहे, राग परिणाम को, उसी का उत्पाद और व्यय वगैरह हो रहे और उसको शुद्ध नय का कथन कर रहे, निश्चय नय का कर रहे। उसका उत्तर देखो, राग परिणाम का कर्ता भी आत्मा ही है और वितराग परिणाम का भी, दोनों का कर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। यह परिणमति स कर्ता, जो स्वयं उस रूप परिणमता है वह उसका कर्ता है। आपने रोटी बनाई ना सुबह क्या? नहीं बनाई? बनाई कितनी बनाई?
नहीं बनाई।
तो उस रूप कौन परिणाम पूछ रहे हो? आटा। तो वो आटा उसका करता है, आपने कुछ नहीं बनाया। ना ना, बनाने का कार्य नहीं किया, यही तो है। अरे यहाँ बैठे बैठे तो स्वीकार करो, घर में भले बोलो अब चलेगा। वैसे तो 24 घंटे ख्याल में रखने की बात है यहाँ, समझ में आई बात? यहाँ बरोबर पकड़ेगी तो घर में वो याद आएगी। देखो यहाँ क्या कहते हैं। देखो अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतंत्रतया करता है और ज्ञान दशा भी। ऐसे यथार्थ ज्ञान के भीतर द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है। देखो क्या कहना है, ज्ञान दशा में क्या होता है? वो द्रव्य सामान्य का ज्ञान है, परंतु उसका इसी में गर्भित है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय सब आ गए ना इसके अंदर। यदि विशेष का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो क्या कहते? विशेष यानी पर्याय, भेद। हम तो विशेषों को गौण करते कहो या उसको हे ये पर्याय की बात मत करो कहते, परंतु जो पर्यायों को यथा है वैसे नहीं जानेगा तो सामान्य का भी उसका ज्ञान सच्चा नहीं होगा। जैसे बहुत बार ये उदाहरण आता है ना, भारत क्या है हमको जानना है, तो भारत देश हम कहेंगे वो तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और फिर उसके इतने प्रांत है, इतने जिले है, उसमें इतने भेद है, इतने अलग अलग पहराव है, इतनी भाषाएं अलग अलग है, इतने इतने लोग रहते हैं। तो हम सारे सभी हम सौराष्ट्र है, गुजरात है और वो क्या है दिल्ली है, महाराष्ट्र है, यूपी है, उत्तराखंड है, केरल है और क्या क्या है तमिलनाडु, सब कुछ है। इतने भेद कर करके हमने जाने, तो कहते भेद तो हमारे लिए गौण करना है, हे ये है त्याज्य है। क्यों? क्योंकि भारत एक अखंड क्या है उसको जानने के लिए हमने भेद करके समझा। अभी एक भारत जब दृष्टि करनी है तो भेद नहीं दिखेंगे, परंतु मूल में ऐसे भेद भारत किसको कहना? तो कहते उसमें श्रीलंका और पाकिस्तान है, उसको भारत कहेंगे हम? यानी उसके भेद अगर सही रूप से नहीं जानेंगे तो अभेद भी उसका सामान्य भी सही नहीं होगा, ये कहेंगे। ख्याल में है ना? ये ज्ञान से उसके भेद भी जैसे है उसको हमको जानना है। ये भले वो गुणस्थानों के हो या अन्य जो कोई भेद करके समझा रहे द्रव्य का, इतना तो हम इसको इतना क्यों, आप ये अधिकार कितने चल रहा है, इतना क्यों घिस रहे उसको? अभेद का ही ज्ञान करना है ना, तो भेदों में जानो ही मत ना। तो नहीं, वो अभेद को नहीं जानेंगे, वो सामान्य के जिसके विशेष हमने नक्की किए हैं, नक्की जान कर फिर उसको गौण करना है। तो विशेषों में बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है, उसको सही नहीं जानेंगे तो सामान्य का भी सही है ज्ञान नहीं होगा। देखो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ की बात मैं पढ़ूंगी। यदि विशेष का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषों को करने वाला सामान्य का ज्ञान होना ही चाहिए। द्रव्य सामान्य के ज्ञान बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए उपरोक्त निश्चय में द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है। ये किसको निश्चय ने कहा? यह द्रव्य गुण पर्याय जिसका जो है वैसा उसको जाना, उसको निश्चय ने कहा। तो उसमें सब आ गए, स्वभाव भी आया, पर्याय भी आया, सब कुछ आ गया। जो जीव बंध मार्ग रूप पर्याय में, ये मोहराग द्वेष के पर्याय कैसे बंध मार्ग रूप है, और मोक्ष मार्ग रूप पर्याय में, यानी शुद्ध पर्याय जिसको हम कहेंगे, स्वभाव पर्याय जो है, तो उसमें आत्मा अकेला ही है। जो कोई पर्याय है उसमें आत्मा ही है, अन्य कोई उसमें कोई उसके द्रव्य की बात ही नहीं वहां पर, भले वो विभाव रूप हो या स्वभाव रूप है, वहां अकेला आत्मा ही है। इस प्रकार यथार्थतया यानी द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सहित जानता है, यानी वो अपेक्षा है उसमें, द्रव्य सामान्य की अपेक्षा लेकर उसको यथार्थ रूप से पर्याय को भी जान रहा है। वह जीव परद्रव्य से संपृक्त नहीं होता, यानी परद्रव्य से कोई उसका संबंध नहीं है, परद्रव्य से वो स्पर्शित नहीं होता है, और द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर एक रूप करके सुविशुद्ध होता है। पर्यायों को जानो ही मत ये बात नहीं है, पहले पर्यायों का ही निषेध कर देते हैं। अरे पर्यायों को अच्छी तरह से जानो, फिर उसको गौण उसको डुबो दो का अर्थ होता क्या, उसका लक्ष्य छोड़ दो और सामान्य का लक्ष्य करो। जहाँ पर्याय वहीं पर सामान्य है, और जहाँ सामान्य वहीं पर विशेष है, यानी विशेष और सामान्य जुदे नहीं है, विशेष बिना सामान्य नहीं है, सामान्य बिना विशेष नहीं है। तो विशेषों को अच्छी तरह से जानना पहले ज्ञान का, तो ज्ञान तो सबको जानेगा, सामान्य को भी और विशेष को भी। तो यहाँ क्या कहते हैं, द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर, पहले में पहले जब सामान्य द्रव्य सामान्य की बात आई, पर्याय है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, ऐसा पूछते, तो पर्याय नहीं है कहने के, पर्याय को निकाल बाहर देते। अरे निकाल बाहर नहीं, उसको अंदर डुबा दिया है, वो दिख नहीं रहे अभी। द्रव्य सामान्य की दृष्टि से पर्याय दिखेगी नहीं, पर्याय अरे वहीं पर है ना अभी, तभी तो यहाँ निश्चय नहीं कहा उसको। द्रव्य गुण पर्याय जैसा है वैसा, जिसका है उसको उसका जानो, वही तो निश्चय ने बताया। एक रूप करके सुविशुद्ध होता है, क्या कहा, द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर, डुबाकर का अर्थ होता है कि पर्याय है वहां पर, उसको भी वो जो भेद है उसका भी गौण कर दिया, उसका लक्ष्य छोड़ दिया, एक रूप करके सुविशुद्ध होता है, उसको सुविशुद्ध कहा। इस प्रकार आलंबन रूप अभिप्राय अपेक्षित होने से उपरोक्त निश्चय को उपादेय कहा है, क्योंकि उसको पहले जानेंगे और फिर उसके उसी के अंदर पर्यायों को डुबो देंगे, तो द्रव्य सामान्य हमको दिखेगा ये कह रहे हैं, इसलिए उसको उपादेय कहा। विशेष जानने के लिए 126वीं गाथा की टीका देखनी चाहिए, जो हम पहले देख के आए हैं, है ना। देखो ये प्रवचन सार में एक एक विषय इतना अच्छा बताया है। हाँ 367 पर है ये नोट, फुट नोट्स दोनों, वो बहुत अच्छी है। अभी हम जैसे नाचार्य की टीका पढ़ेंगे, उसी 366 पेज पर है, हिंदी में, गुजराती में कहाँ है,
79
एक मिनट, हाँ हाँ फिर से पढ़ू, फिर से पढ़ना है, अच्छा जरा मुझे ये 79 पेज पर एक मिस्टेक ख्याल में आई, वो बता देती हूँ। हाँ अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत टीका है ना, राग परिणाम ए, पहली लाइन पहला शब्द एदात्मना है ना, वो एवात्मना, एव आत्मा, एव आत्मनः कर्म, एवा एदा हुए ना, एवा एव एव आत्मा, आत्मनः कर्म, आत्मा का कर्म है, डबल दा के बदले वा करना, एक्चुअली हम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे परंतु सामने दिखा तो
रिपीट करे क्या होता है
राग। हाँ देखो गाथा के नीचे की लाइन संस्कृत मिला 189 दो बार लिखे ना, एक प्राकृत एक संस्कृत, उसके नीचे की लाइन पहला शब्द क्या है,
अमृतचंद्राचार्य
की, पहला शब्द है राग परिणाम और दूसरा शब्द है
एद्दात्मना,
एद्दा के बदले एवा, एव आत्मना, एवा देखो आप कहेंगे, आप कहते हैं फुटनोट जरा फिर से पढ़ना, क्योंकि यहाँ राग परिणाम को जानने वाले को निश्चय ने कहा है। अच्छा उन्होंने ग्रुप पर डाला है। हाँ आप देख सकते हैं उसको। आप उनका मोबाइल ले लो ना। हाँ आपको देखना है इसमें ही डाला है उन्होंने।
देख लिया।
हाँ मैं फिर से पढ़ती हूँ। यहाँ शुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्याश्रित परिणाम की अपेक्षा से जानना चाहिए। इस गाथा में शुद्धने का कथन किसको कहा? जो एक द्रव्य का जो कुछ उसके पर्याय वो उसी के कहना। एक ही द्रव्य के आश्रित है। मोह राग द्वेष परिणाम आत्मा के ही आश्रित है। वो आत्मा की ही पर्याय, आत्मा ही उस रूप परिणत हुआ है, उसको आत्मा का ही कहना, ये शुद्ध नय का कथन है। यहाँ पर समझ में आई बात? उसको शुद्ध द्रव्य का कथन कहते हैं और अशुद्ध द्रव्य का कथन, शुद्ध नहीं कहा, नहीं नहीं कहा, शुद्ध द्रव्य का कथन कहा, उसको निश्चय नहीं कहेंगे। और अशुद्ध द्रव्य का कथन एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य में आरोपित करने की अपेक्षा से जानना चाहिए। कर्म का कर्म में जो कर्मानुवर्गणा कर्म रूप हुई तो वो जीव का बंध है ऐसा कहना, वो जीव ने वो बंध किया ऐसा कहना, वो क्या है? अशुद्ध द्रव्य का कथन। उसी को यहाँ व्यवहार नहीं कहेंगे। अब सेकंड पॉइंट, निश्चय नय उपादेय है और व्यवहार नय हेय है। पर यहाँ निश्चय ने किसको कहा था? एक द्रव्य की पर्याय को उसी के कहना, वो निश्चय ने यहाँ पर लिया है इस गाथा का विषय। इसलिए यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा? द्रव्य सामान्य का आलंबन ही उपादेय है। द्रव्य सामान्य ने वहाँ पर्याय की कोई चर्चा नहीं है, सामान्य की बात है। और हम उसी का आलंबन लेना है, उसी को जानते ही रहना है, उसी की दृष्टि करना है, उसमें मयपना स्थापित करना है। फिर भी यहाँ यहाँ अभी इस 189 गाथा में राग परिणाम की ग्रहण त्याग रूप पर्यायों को स्वीकार करने वाले, ये यहाँ का निश्चय ने किसको स्वीकार कर रहे? जीव के जो राग परिणाम का ग्रहण त्याग ने उत्पाद व्यय, ये आत्मा का ही है और वो निश्चय ने उसको भी ग्रहण करता है, उसको भी जानता है। उसको जानने वाले को निश्चय ने कहा और उसको यहाँ उपादेय भी कहा। तो कहते उसको उपादेय क्यों कहा? क्योंकि वो तो राग परिणाम को भी विषय कर रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। द्रव्य सामान्य को विषय करने वाले को कहो तो हम मान्य करेंगे, परंतु यहाँ तो राग द्वेष वाले को भी मान्य किया है, तो ऐसा क्यों? वह उपादेय के यह उपादेय क्या है चीज? तो उसका उत्तर, राग परिणाम का कर्ता भी आत्मा ही है और वितराग परिणाम का भी, क्योंकि वही आत्मा ही उस रूप परिणमित होता है। अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतंत्रतया करता है और ज्ञान दशा भी, यानी राग ये मोह राग द्वेष करता है तो कोई जबरदस्ती उसको करवाता है? आत्मा स्वयं करता है, वो स्वतंत्रता से करता है, उसको कर्ता कहते हैं। ऐसे यथार्थ ज्ञान के भीतर, यानी ये ज्ञान कैसा है? यथार्थ ज्ञान है। यहाँ श्रद्धा का विषय नहीं चल रहा है, दृष्टि का विषय नहीं चल रहा है, ज्ञान की बात चल रही है। इसको कहेंगे यथार्थ ज्ञान। द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समाही जाता है, क्योंकि वो तो ज्ञान है ना, तो उसमें तो सामान्य विशेष दोनों को विषय करता है, उसी को तो ज्ञान कहेंगे, तो उसमें वो गर्भित है। भले बात किसी अपेक्षा से किसी एक की वार्ता करते हैं, नए तो है उसको, दूसरे के भी वहाँ गर्भित होती है, उसके अपेक्षित होते हैं नए भी। तो कहते कि यथार्थ ज्ञान के भीतर कौन सा यथार्थ ज्ञान है? कि उसकी वितरागी और विरागी रागी दोनों ही पर्यायों को उसने स्वीकार किया। उसमें द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समाही जाता है, क्योंकि वो भले वो राग परिणाम हो या वितराग परिणाम हो, हम वो पर्यायों को डुबो देंगे तो क्या दिखेगा? द्रव्य सामान्य। यानी उसमें द्रव्य सामान्य गर्भित है ये कह रहे हैं। यदि विशेष का भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो विशेषों को भी सही रूप से जानना चाहिए, यथार्थ रूप से जान, भले विकारी है अविकारी है, वो आत्मा की है, आत्मा उस रूप परिणमित हुआ है, तो उसको भली भांति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषों को करने वाला सामान्य का ज्ञान होना ही चाहिए। ये विशेष वो सामान्य से विशेष भाव हुए। द्रव्य सामान्य के ज्ञान के बिना पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य सामान्य का ज्ञान है तो पर्यायों का भी यथार्थ ज्ञान होगा और वाइस वर्सा भी हम कहेंगे। बरोबर, पर्याय तो व्यक्त है ना, तो उसको ज्ञान करके फिर हम उसको डुबो देंगे, वही तो आगे जाके बताया उन्होंने। परंतु उसमें वो द्रव्य सामान्य भी गर्भित है वहां पर। तो यहाँ लिखा है द्रव्य सामान्य के ज्ञान के बिना पर्याय का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता, इसलिए उपरोक्त निश्चय में, उपरोक्त निश्चय नहीं यहाँ वाला, इस गाथा का कौन सा, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को बताने वाला, द्रव्य सामान्य का ज्ञान गर्भित रूप से समा ही जाता है, वो उसमें गर्भित है, वो एक्सेप्टेड है वहां पर, क्योंकि विशेष जहां विशेष का ज्ञान होता है वहां सामान्य भी है ही। जो जीव बंद मार्ग रूप पर्याय में, कौन सी है ये, मोह राग द्वेष वाली, तथा मोक्ष मार्ग रूप पर्याय में आत्मा अकेला ही है, इस प्रकार यथार्थतया जानता है, यानी जो जीव बंद मार्ग में भी आत्मा अकेला और मोक्ष मार्ग के पर्याय में भी आत्मा अकेला ऐसे यथार्थपने जानता है। यथार्थपने किसको कहा, द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सहित, अकेले विशेष को जानता है ऐसा नहीं कहा, द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सहित विशेष को भी जानता है, तो उसने यथार्थतया जाना। वह जीव परद्रव्य से संपृक्त नहीं होता, यानी परद्रव्य से संबंधित नहीं होता, और द्रव्य सामान्य के भीतर पर्याय संपृक्त, एक्चुअली वो केमिस्ट्री में संपृक्त शब्द आता था, वो कॉन्सेंट्रेटेड ऐसा होता था ना, यानी उसको मिल नहीं जाता उसके साथ,
जुड़ा हुआ,
एकमेक नहीं होता,
जुड़ा हुआ है,
हाँ, जुदा ही रहता है, यानी वो विभक्त ही रहता है, वो संपृक्त नहीं होता, एकमेक नहीं होता, वह जो परद्रव्य से संपृक्त नहीं होता, एकमेक, यानी वो तो परद्रव्य से जुदा ही रहता है, और फिर क्या करता है, और द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर, यानी पहले उसने यथार्थतया जाना, कैसे जाना, विशेषों को जाना, वो भले राग वाली हो वितराग वाली हो, परंतु द्रव्य सामान्य की अपेक्षा सही जाना, यानी परद्रव्य से भिन्नता जान ली उसने, फिर अभी क्या करना है, अभी पर्यायों को डुबो दिया तो क्या दिखेगा, द्रव्य सामान्य दिखेगा, तो यथा द्रव्य सामान्य के भीतर पर्यायों को डुबाकर एक रूप करके सुविशुद्ध होता है, यानी उसे एक रूप दिखाई देता है, उसमें वो पर्यायों की विभिन्नता अभी दिखाई नहीं देगी, उसने अभी वो निमग्न कर दी उसके अंदर। इस प्रकार आलंबन रूप अभिप्राय अपेक्षित होने से, यानी वो आलंबन किसका है, अभी द्रव्य सामान्य का आलंबन किया उसने, उपरोक्त निश्चय नय को उपादेय कहा है, यानी आगे चलकर द्रव्य सामान्य का ही उसको आलंबन लेना है, परंतु उसके पहले उसके विशेषों को उसी द्रव्य के, उसको उसी के द्रव्य के जानना है, और बाद में उस विशेषों को डुबो देना, यानी गौण करना है, और द्रव्य सामान्य का आलंबन करना है। इसलिए उस यहाँ वाला जो 189 गाथा का निश्चय नय है उसको भी उपादेय कहा है, ये हमने दोबारा लिया, ले लिया, कौन सा
वो इसमें आया
आपका, उन्होंने अभी वो डाला ना, ये सब देख सके, सामने लाइन लिखी हुई हो तो जरा फर्क पड़ता है। अभी हम 366 पेज पर ही अपने हिंदी में जयसेन आचार्य की टीका, वो तो आपके पुस्तक में भी है, बड़ी है। देखो क्या कहते हैं, अथ यानी अब इस गाथा में निश्चय व्यवहार यो हो अविरोधम दर्शयति, निश्चय व्यवहार इन दोनों का अविरोध बताते हैं। ऐसो बंध समासो, ऐसे हुआ है, ऐसो करो। अरविंद भाई जरा देखना, मैं पढ़ती हूँ तभी। हाँ, ऐसो बंध समा, ऐसो यानी ऐशा, ऐश ऐश बंद समास, यानी यह बंद समास है। उन्होंने एक्चुअली वर्ड टू वर्ड पहले ट्रांसलेशन किया, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ऐशा का अर्थ है यह, एक्चुअली वो शब्द है ऐशा, उसका विसर्ग लोप हो जाता है, ऐश यानी यह। बहुधा पूर्वोक्त प्रकारो रागादि परिणति रूपो बंध संक्षेप, यानी अभी जो बताया ना उन्होंने पहली गाथाओं में जो बताया उसमें, तो यह क्या है, पूर्वोक्त प्रकार वाला रागादि परिणति रूप बंध है, उसका बंध संक्षेप है। केशाम संबंधी, किनके संबंधी ये बंध की बात चल रही है, जीवाणम जीवानाम यानी जीवों के संबंधी है। निश्चयेन निर्दिष्टो, निश्चय नयन निर्दिष्ट यानी कथित, यानी निश्चय नय से बताया है, कथित है ना बताया है। कहीं कर्तुभूत ही, किसने बताया है यानी उनके बताने वाले कौन है, कर्तुभूत यानी किसने बताया है, अरहंते ही अरहत भी यानी अरहंतों ने बताया। निर्दोषी परमात्मा भी, अरिहंत को ही दूसरा नाम क्या बताया, निर्दोषी परमात्मा ने बताया। केशाम किनको बताया, तो कहते जदीनम यानी यतियों को बताया, तो उसको क्या बताते, जितेंद्रियत्वेन यानी जितेंद्रिय होने से, यतियों को क्या कहते हैं, जितेंद्रिय, इंद्रिया जीत ली उन्होंने, तो जितेंद्रियत्व होने से शुद्धात्म स्वरूपे यत्न प्राणाम, जितेंद्रिय होने से, जितेंद्रियत्व होने से शुद्धात्म स्वरूप में जो यत्न पर यानी उसमें जो लीनता है, यत्न प्राणाम यत्न पर जो है यानी बारंबार उसमें जो लीनता धारण करते हैं, गणधर देवादि यति नाम, ऐसे गणधर देवादि यतियों को उन्होंने बताया। क्योंकि उन बताया हुआ गणधर समझते हैं, जानते हैं और उसका उपदेश देते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं ना, और वो अभी मैं समोसरण का वर्णन पढ़ रही हूँ तो उसमें भी आता है कि जो अन्य लोग हैं वो गणधर को प्रश्न पूछते हैं, ऐसे हम कहेंगे भगवान को पूछते हैं, पर वो गणधर को पूछते हैं और गणधर उनको उत्तर देते हैं। जदिनम व्यवहारो, द्रव्य कर्म रूप व्यवहार बंध, यानी व्यवहार अन्य बताया है ऐसा पूरा वाक्य है ना, तो व्यवहार किसको कहा, द्रव्य कर्म रूप व्यवहार बंध जो है, अन्नहा भणितो यानी अन्यथा भणिता यानी अन्य जो बताया है, निश्चय नय अपेक्षया अन्यथा व्यवहार नये न इति भणिता, यानी निश्चय नय की अपेक्षा उसको अन्यथा कहा, निश्चय नय से अन्य क्या है, तो व्यवहार नय, तो व्यवहार नय से ऐसा बताया है। किंच रागादीन एव आत्मा करोति तान एव भुंक्ते च इति निश्चय लक्षणम इदम, क्या कहते हैं, रागादी ही आत्मा करता है और उन्हीं को भोगता है, यानी आत्मा राग को ही करता है और राग को ही भोगता है, यह निश्चय नय का लक्षण यहाँ बताया है। अयम तु निश्चय नयो द्रव्य कर्म बंध प्रतिपादक असद्भूत व्यवहार नय अपेक्षया शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मको, विवक्षित निश्चय नय तथा एव अशुद्ध निश्चय च बन्यते। क्या कहते हैं, यह जो निश्चय नहीं है वह द्रव्य कर्म बंध जो प्रतिपादक असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से, यानी द्रव्य बंध को बताने वाला वो क्या है, प्रतिपादन करने वाला, प्रतिपादक यानी बताने वाला वो कौन है, असद्भूत व्यवहार ने, यानी असद्भूत व्यवहार ने द्रव्य बंध का प्रतिपादन करता है, उसकी अपेक्षा से शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मको, यह यहाँ का जो विषय नय है वो कैसे, शुद्ध द्रव्य का निरूपणात्मक ऐसा जो यह विषय, ये निश्चय नय है, विवक्षित निश्चय नय, इसको विवक्षित निश्चय ने कहा, क्योंकि यहाँ यहाँ उसकी विशेषता क्या है, ये द्रव्य गुण पर्याय को भी लिया, अशुद्ध पर्याय को भी लिया है, तो इसको लिए विवक्षित है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर निश्चय नय है, विवक्षित निश्चय नय तथा तथा एव अशुद्ध निश्चय च बन्यते, उसको निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय बताते हैं। द्रव्य कर्माणि आत्मा करोति भुङ्क्ते च इति अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक असद्भूत व्यवहार नयो बन्यते, यानी द्रव्य कर्म आत्मा करता है और आत्मा ही उसको भोगता है, ऐसा अशुद्ध द्रव्य निरूपण करने वाला, अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक कौन है, असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। इदम नय द्वयम तावत अस्ति, ऐसे यहाँ दो नय है, कौन से, निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय शुद्ध द्रव्य का कथन करता है, यानी भले राग की पर्याय भी वो जीव की है कहता है, और वो अशुद्ध नय जो जो व्यवहार नय है वो क्या करता है, परद्रव्य की पर्याय जीव की है, द्रव्य बंध है वो जीव का, ऐसा कहता है। किंतु अत्र निश्चय नय उपादेय न च असद्भूत व्यवहार, परंतु यहाँ निश्चय नय उपादेय है और असद्भूत व्यवहार नय उपादेय नहीं है, उसको जानने जानने के लिए ठीक है, उसका आदरणीय नहीं है, आलंबन करने के लिए योग्य नहीं। ननु खरेखर रागादि नाम आत्मा करोति, अने आत्मा रागादि को ही करता है, भुङ्क्ते च इति एवं लक्षणों निश्चय नयो व्याख्यातः, ऐसे करोति के बाद फुल स्टॉप क्यों दिया, हाँ लास्ट टाइम निकाला था ना, क्या कहते हैं, राग आदि को आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है, ऐसा जो लक्षण वाला निश्चय ने बताया है, स कथम उपादेय भवती, वो उपादेय कैसे हो सकता है, जो अभी हमने हिंदी में फुटनोट पर देखी थी ना वही बात है, फिर से इसका अर्थ कहना, यानी खरखर राग आदि नाम आत्मा करोती भुङ्क्ते च, यानी राग आदि को आत्मा ही करता और आत्मा ही भोगता है, ऐसे लक्षण वाला जो निश्चय ने बताया है वो उपादेय कैसे हो सकता है, परिहारम आह, इसका परिहार करते हैं, यानी उसको उत्तर देते हैं, रागादीन एव आत्मा करोति न च द्रव्य कर्म, यानी आत्मा रागादि को ही करता है, द्रव्य कर्म को नहीं करता, रागादया एव बंध कारणम, रागादीन एव आत्मा करोति, यानी आत्मा रागादि को ही करता है न च द्रव्य कर्म को नहीं करता, रागादय एव बंध कारणम इति, यानी रागादि ही बंध के कारण है, इति यदा जानाति जीवः, जीव जब यह जानता है तदा, यानी जब जानता है तदा, तब राग द्वेषादि विकल्प जाल त्यागेन रागादि विनाशार्थम निज शुद्धात्मानं भावयति, यानी जब यह जीव जानता है कि रागादि ही बंध के कारण है, तब जीव क्या करता है, राग द्वेषादि जो विकल्प जाल है उसका त्याग करके रागादि का विनाश के लिए निज शुद्धात्मा का भावयति, यानी उसमें एकाग्र होता है, उसकी भावना करता है, यानी उसमें एकाग्र होता है, ततश्च रागादि विनाशो भवति, यानी उस कारण वो रागादि का विनाश होता है, रागादि विनाशे च आत्मा शुद्ध भवति, और रागादि का विनाश होने पर आत्मा शुद्ध होता है। अब ये शुद्ध कौन सा है, वो पर्याय वाला, ख्याल में आई बात, पहले शुद्ध बताया था, वो परद्रव्य रूप नहीं था तो शुद्ध बताया था, अभी वो पर्याय में भी शुद्ध हो गया। ततः इसलिए परंपरया परंपरा से शुद्धात्म साधकत्वात् अयम अशुद्ध नय अपि उपचारे न शुद्ध नयो बन्यते। क्या कहते हैं? परंपरा से शुद्धात्म साधकत्वात्, परंपरा का अर्थ क्या है? नहीं नहीं, परंपरा ने आगे चलकर, कैसे आगे चलकर? क्योंकि अभी जो शुद्ध बताया थे ना, यानी रागादि को बताया था, अब पर्याय उनको अभी लक्ष्य छोड़कर, जैसे देखो शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहीं कहते हैं, वो कैसा परंपरा से शुभ भाव करते करते नहीं होगा, शुभ शुभ राग छोड़कर शुद्ध भाव प्रकट करेगा तो उसको परंपरा से कहते। और यहाँ पर भी यहाँ वाला जो शुद्ध नय है, जो एक्चुअली कैसा है, असद्भूत है, यानी वो तो यहाँ तो अशुद्ध है ना, रागादि को बताया, विकारी परिणाम को है, उसको शुद्ध कहा, परंतु उन परिणामों को लक्ष्य छोड़कर, जो उसको कहेंगे ना पर्याय को डूबो कर, तो उसको कहेंगे परंपरा, वो कारण है। अभी तो उसको जानेंगे, बाद में इसी को गौण करके मात्र द्रव्य सामान्य को जानेंगे, फिर से पढ़ती इस वाक्य। तथा इन इसलिए परंपरया परंपरा से शुद्धात्म साधकत्वात्, यानी शुद्धात्मा का साधक होने से, ये कैसा साधक होगा? अभी तो उसको हमने अपना स्वीकार किया है, ये बंदा हमारा है, ये मोहराग द्वेष ही मेरा बंद है, मैं ही स्वरूप परिणत हुआ है, फिर बाद में इसको गौण करके द्रव्य सामान्य को हम लक्ष्य करेंगे, इसलिए बाद में ये शुद्धात्म का साधक है आगे चलकर, इसको कहते हैं परंपरा साधक, डायरेक्ट नहीं है, इसको छोड़ेंगे तो उसको साधक कहेंगे। तो कहते हैं परंपरा से शुद्धात्म का साधक होने से अयम अशुद्ध नयः अपि, यह अशुद्ध नय भी, एक्चुअली वो अशुद्ध है परंतु उसको यहाँ उपचार से शुद्ध कह रहे हैं, तो यह अशुद्ध नय भी उपचारे न शुद्ध नयो बन्यते, उपचार से इसको भी शुद्ध नय कहेंगे, कहते हैं निश्चय नयो बन्यते, इसको भी निश्चय नय कहते हैं, शुद्ध नय कहते हैं, निश्चय नय कहते हैं, तथा एव उपादेय बन्यते, और वैसे उपादेय भी बना बता रहे, वो उपादेय नहीं, उपादेय तो हमने द्रव्य सामान्य को कहा था, परंतु यहाँ वाला जो शुद्ध नय, यहाँ वाला जो निश्चय नय, किसको? राग का आत्मा को कहने वाला है, तो वो भी परंपरा से, परंपरा क्यों, उसको छोड़कर द्रव्य सामान्य का लक्षण करे लक्ष्य करेंगे, तो इसलिए परंपरा से वो भी उपादेय कहते हैं, अशुद्ध होने पर भी उसी को शुद्ध ने कहा, उसी को निश्चय ने कहा और उसी को उपादेय भी कहा, इति अभिप्राय, ऐसा यहाँ का अभिप्राय है। देखो ये आचार्यों की ऐसी करुणा, कितना एक गाथा में से कितना निकाल कर बताए। अब मूल पुस्तक पर आती है, वहाँ देखा ना आपने संस्कृत में सब बराबर है क्या?
81
अच्छा, हाँ देखो ये नया प्रवचन है, प्रवचन सार 189 गाथा, मैं हमेशा मुझे गड़बड़ी होती है 79-89 में। प्रवचन एटले दिव्य ध्वनि, भगवान जिनेश्वर देव परमात्मा जेमने एक समय में त्रण काल त्रण लोक ज्ञान ने पर्याय जानता जनाई गया। क्या कहा? उन्होंने तो अपने ज्ञान की पर्याय जानी, तो ज्ञान की पर्याय को जानने पर वो जनाई गया, क्योंकि वो ज्ञान की पर्याय क्या कर रही थी? सबको जान रही थी। ए भगवान नी वाणी मां जे आयु एने दिव्य ध्वनि एने प्रवचन सार कहे छे। प्रवचन, प्र एटले विशेषे वचनो, दिव्य ध्वनि तेनो आ सार छे। अब यहीं रुकेंगे हम, क्योंकि शुरू से प्रवचन पढ़ेंगे हम कल। पेज अभी प्रवचन नंबर कल 668 होगा, कल तारीख 12 है ना, 12-5। आज का अच्छा आया विषय। વાણી કે જ્ઞાન તે સૂજે લો કાલો સો વાણી મસ્તકનમ સદા દેત હોડો. આશા બેન